आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
आज तक रेडियो पर इलेक्शन स्पेशल दिन भर सुन रहे हैं आप। 13 मई की तारीख है, शनिवार का दिन है। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आज ये कटाक्ष आया। बजरंग बली का नारा प्रधानमंत्री ने लगाया था, लेकिन संजीवनी मिल गई कांग्रेस पार्टी को।
जय बजरंग बली, तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली।
कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है और कांग्रेस को मिल गया है स्पष्ट और बड़ा बहुमत। कांग्रेस कह रही है कि अब दक्षिण भारत बीजेपी मुक्त हो गया है। कांग्रेस की इस जीत के सबसे बड़े फैक्टर्स पर आज बात करेंगे। मुख्यमंत्री का सहरा डीके शिवकुमार के सिर बंधेगा या सिद्धरमैया के, इसी से करेंगे आज दिन भर की शुरुआत।
कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं।
और इसी साल 5 और राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। हिमाचल के बाद कर्नाटक से जो मोमेंटम कांग्रेस को मिला है, उसे बनाए रखने के लिए राहुल गांधी की पार्टी को क्या करने और क्या नहीं करने की जरूरत है। क्या अरसे से बीजेपी से लड़ते हुए इस लड़ाई के कुछ डूज एंड डोंट्स कांग्रेस ने क्रैक कर लिए हैं, और क्या कांग्रेस देश में मुसलमानों की पहली पसंद बन सकती है आने वाले चुनाव में, इस पर भी बात होगी। और नतीजे आए हैं उत्तर प्रदेश से भी। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंपर जीत हासिल की है। 17 नगर निगम के मेयर पदों पर बीजेपी जीती है। कई राज्यों में जब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं, उसी समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी सफलताएं डिलीवर कर रहे हैं। 2024 में जब योगी पर 80 सीटों का दारोमदार होगा, तो क्या वो अघोषित तौर पर बीजेपी के नंबर दो नेता हो जाएंगे, इस पर भी बात होगी। इन सारे सवालों पर आज एक्सपर्ट से बात करेंगे हमारे इलेक्शन स्पेशल दिन भर में। लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस खुशबू कुमार से।
थैंक यू कुलदीप। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 136 सीटों पर जीत के साथ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत। बीजेपी 65 सीटों के नीचे सिमटी, जेडीएस को मिली 20 सीटें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कर्नाटक सीएम बसवराज बोले, अंदरूनी लड़ाई और अन्य वजहों से हारे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक चुनाव के बाद दी प्रतिक्रिया, कहा बीजेपी अब जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव नहीं होने देगी। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम में बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप, सपा बसपा और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। एक लोकसभा, 4 विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट हुए जारी। जालंधर लोकसभा आप जीती, यूपी की दोनों सीटें भाजपा गठबंधन को, ओडिशा में बीजेडी, मेघालय में यूडीपी की जीत। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल पहलवान के समर्थन में पहुंचा जंतर मंतर, भूपेंद्र हुड्डा बोले, न्याय मिलने में देर है, अंधेर नहीं। साइक्लोन मोका से बांग्लादेश में लाखों लोगों के प्रभावित होने की आशंका, 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पाकिस्तान में इमरान खान जवान पार्क से देश को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिया अल्टीमेटम, हिंसा करने वालों को 72 घंटों में पकड़े। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की सनराइजर्स हैदराबाद पर लगातार तीसरी जीत, 7 विकेट से जीता मुकाबला। 19 ओवर में बनाए 185 रन।
आज तक रेडियो पर ये दिन भर है और मैं हूँ कुलदीप मिश्र। चुनाव नतीजों का दिन। एक अरसे के बाद दिल्ली का 24 अकबर रोड आज गुलजार है। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय के अहाते में आज पटाखे, ढोल और ताशे की आवाजें गूंजती रहीं। कांग्रेस को अपेक्षाकृत रूप से एक बड़े राज्य कर्नाटक में बड़ा बहुमत मिला है, जहां लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। उस कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 136 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती नजर आ रही है। बहुमत के लिए 113 सीटें ही चाहिए थी। वहीं बीजेपी 65 सीटों के नीचे सिमटती दिख रही है और एचडी कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस भी 20 सीटों से ऊपर जाती नहीं दिख रही। चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुस्कान आज देखते ही बन रही थी।
भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली, उसमें जो 91 से विधानसभा थी, उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा।
कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से 5 वायदे किए थे, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे।
इस जीत का श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को तो पार्टी दे ही रही है, साथ ही वहां की मजबूत लोकल लीडरशिप के सिर भी सहरा बांधा जा रहा है। इस चुनाव में पार्टी के 5 बड़े स्टार रहे, डीके शिवकुमार, सिद्धरमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और जी परमेश्वर। आज जीत के बाद कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार मीडिया से जब बात करने आए तो अपने जेल के दिनों को याद करके भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से जो वादा किया था वो पूरा हुआ।
आई एश्योर्ड श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे दैट आई विल डिलीवर कर्नाटक टू देयर फोल्ड। आई कांट फॉरगेट श्रीमती सोनिया गांधी कमिंग टू मीट मी जेल व्हेन ऑल दिस बीजेपी पीपल पुट मी अंडर जेल, सो आई रादर चूज टू बी इन जेल।
उधर बीजेपी दफ्तर में आज गहरी खामोशी छाई रही। उनके कुछ प्रवक्ता टीवी चैनलों पर आपा खोते हुए भी दिखे, लेकिन मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने हार की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने में देर नहीं की।
कहीं ना कहीं हमारे कमियां रही, वो कमियां क्या है हम 2-3 दिन में बैठ के कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जो भी हमारी पार्टी के लिए हार हुई है उसका जिम्मेदार भी मैं लेता हूँ।
कुल मिलाकर यह है कि दक्षिण भारत में भाजपा का इकलौता कमल मुरझा गया है और इस साल होने वाले 5 विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को नया मोमेंटम मिला है। आइए समझते हैं कि नतीजों के सबसे बड़े फैक्टर्स क्या रहे। मैंने बात की बेंगलुरु बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट संदीप शास्त्री से। संदीप, आपसे पहले भी बात होती रही, पहला सवाल यही कि जो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का कारण है, क्या भाजपा की हार का कारण भी वही है? जिस गैप को भाजपा ने खाली छोड़ दिया, क्या कांग्रेस ने उसी को भरा, या बिल्कुल ये 2 अलग अलग फैक्टर्स थे दोनों पार्टियों के लिए हार और जीत के?
हार और जीत के अलग अलग कारण होते हैं। अगर बीजेपी हारी है, उसकी राज्य सरकार की छवि जो थी उस छवि के कारण बीजेपी हारी है। अगर कांग्रेस जीती है, जिस तरह की एक वो इंग्लिश में कहते हैं रेनबो सोशल कोएलिशन उन्होंने क्रिएट किया था, अलग अलग जातियों को साथ अपने सपोर्ट में लाया था, वो एक कारण है। सो अगर आप अलग अलग रीजन बताना चाहते हैं, लेकिन जो मैंने कहा बीजेपी क्यों हारी वो कारण कांग्रेस क्यों जीती का भी एक कारण हो जाता, बट कांग्रेस को क्यों जीती ये सोशल कोएलिशन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो सोशल कोएलिशन बीजेपी बिल्ड नहीं कर सकी। सो एक तरह से मुख्य कारण होता है, पर दोनों के बीच में एक संबंध भी है।
अच्छा, एक सवाल था कि मुख्यमंत्री और सरकार गठन के पॉसिबल फॉर्मूले पे अभी कोई बात बनती दिख रही है अभी, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है बहुत सारी मीटिंग्स होनी है, पर क्या मान मनोवल की नौबत तक आएगी, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने देखा था जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई और 2-3 बड़े उम्मीदवार थे?
फॉर्मूला तो उनको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धरमैया को आप इस कॉन्टेक्स्ट में उनको नकार नहीं सकते, एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अगर आप राज्य में गए होते प्रचार के समय तो ज़्यादातर उन्हीं का नाम लोग ले रहे थे। बट शिवकुमार जी को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने संगठन में काफ़ी काम किया है, उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स काफ़ी रहा है। सो कहीं पार्टी को दोनों को कैसे साथ में लाएं वो एक प्रयत्न करना पड़ेगा अभी।
अच्छा, एक सवाल और, ऐसा लगता है कि मुस्लिम कंसोलिडेशन कांग्रेस के पक्ष में गया है कर्नाटक चुनाव में, और जेडीएस को छोड़ करके इस बार कर्नाटक में मुसलमानों ने बड़ी संख्या में कांग्रेस को चुना है, तो उसकी बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? क्या वो सिर्फ मैनिफेस्टो के वादे थे, वो आरक्षण का दाव था, या ऐसा एक ट्रेंड दिखा है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस को ही अब मुख्य विकल्प देख रहा है, वहां पर वहां के लोकल सेंटिमेंट्स के हिसाब से बताइए।
यहाँ पे दो विषय हैं। एक, हमेशा मुसलमान वोट देखें तो वो टैक्टिकल वोटिंग हर चुनाव में करते आए हैं, तो उनको जो लगता है कि किनको वो डिफीट करना चाहते हैं, कौन वो डिफीट कर सकेगा, वो एक मेजर फैक्टर होगा। और आगे अभी आप देखिए SDPI ने भी स्टेटमेंट दिया था ये चुनाव के दौरान, SDPI उस पार्टी को सपोर्ट करेगा जो बीजेपी को हरा सके। सो ये टैक्टिकल वोटिंग ज़रूर हुआ है इस बार। कर्नाटका हमेशा 40 सालों से केंद्र और राज्य के बीच में फ़र्क कर रहा है, चुनावों एक चुनाव नहीं होता वो, ये जो कर्नाटका में इस साल हुआ है अगले साल वही होगा कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि अगले साल के चुनाव के विषय कर्नाटका के मतदार के मन में बहुत ही अलग हैं। सो दोनों को कंपेयर करने की कोई संभावना ही नहीं है।
ये थे बेंगलुरु बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट संदीप शास्त्री। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद देश में अब गैर बीजेपी पार्टियों की सरकारें 57% आबादी और 56% क्षेत्रफल पर पहुंच गई हैं, जबकि दिसंबर 2017 में बीजेपी का शासन 78% आबादी और 69% क्षेत्रफल तक पहुंच गया था। तो एक बड़ी गिरावट, अगर देश के मैप को आप दो रंगों में बांटें, एक रंग भाजपा का हो और एक गैर भाजपाई सरकारों का, तो अभी ज्यादा आबादी और ज्यादा क्षेत्रफल पर गैर भाजपाई सरकारें हैं। कर्नाटक चुनाव तो हो गए, इस साल नवंबर दिसंबर के महीने में कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश और मिजोरम में बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकार है, वहीं छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की है और तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति सत्ता में है। कर्नाटक खोने के बाद भाजपा दक्षिण में तेलंगाना में खुद को जमाना चाहेगी, वहीं कांग्रेस कर्नाटक चुनाव के मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। हिमाचल प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस को जीत की एक रेसिपी तो दे ही दी है कि राज्य के चुनावों को कैसे लड़ना चाहिए। कांग्रेस के नैरेटिव में क्षेत्रीय मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई और सोशल वेलफेयर से जुड़े वायदों का एक बैलेंस दिखा है। आगे के चुनावों में कांग्रेस को ये प्रदर्शन बनाए अगर रखना है तो किन चीजों पर फोकस करना होगा और किन चीजों से बचना होगा, यही सवाल मैंने पूछा सीनियर जर्नलिस्ट शरद गुप्ता से।
देखिए, हर राज्य का अलग मिजाज होता है, हर राज्य की अलग भाषा, अलग मुद्दे। आप राष्ट्रीय मुद्दों पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते, विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही लड़े जाते हैं, राज्य के मुद्दों पर लड़े जाते हैं। तो और इस बार हिमाचल और कर्नाटक में दोनों जगह कांग्रेस ने यही किया, स्थानीय मुद्दों को हाईलाइट किया, करप्शन को हाईलाइट किया। उन्होंने महिलाओं को और कई समाज के अलग अलग वर्गों को, विद्यार्थियों को अलग अलग स्कीमें ऑफर की, तो ये एक टेम्पलेट था। लेकिन किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकजुटता। कोई भी पार्टी उतनी ही मजबूत होती है जितने मजबूत उसके कार्यकर्ता, और पिछले 20-25 सालों में धीरे धीरे कांग्रेस अधिकतर राज्यों में उसके कार्यकर्ता और नेता पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में, खासतौर से भाजपा में शामिल होते गए हैं, इसलिए कांग्रेस हर राज्य में कमजोर हो गई। तो कर्नाटक में अगर मजबूत रही है या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तो उसका कारण यही है कि यहां पे बार बार वो सत्ता में आती रही हर 5 साल पे, तो इसलिए वहां पे एक सत्ता का जो गोंद होता है, जो लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को चिपका के रखता है, जब अगर आप बार बार हारते जाएंगे तो लोग हटते जाते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि क्षेत्रीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़े जाने चाहिए और मेरे ख्याल से वही लड़े जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी यह है कि कांग्रेस को ग्रास रूट लेवल पे अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा, जो आपसी मतभेद हैं वो हटाने पड़ेंगे और एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, तभी वो बीजेपी को एक टक्कर देने की स्थिति में होगी।
अच्छा, एक चीज और, जो रीजनल पार्टीज हैं उनके रोल को लेकर भी एक सवाल है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने इस चुनाव में जिस तरह जेडीएस की जमीन को लपका है, क्या ये स्ट्रेटेजी आगे और राज्यों में भी, खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों में उनके काम आएगी? कि बीजेपी का वोट बैंक आप देखिए कर्नाटक में भी अभी ठीक ठाक बना हुआ है, वो कमोवेश इंटैक्ट ही है, जेडीएस का तेजी से घटा है, तो क्या कांग्रेस को अब बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने में अपनी ऊर्जा खपाने के बजाय क्षत्रपों के वोट बैंक को वापस हासिल करने की, उस पर फोकस करने की कोशिश करनी चाहिए? क्या ये एक नेशनल स्ट्रेटेजी कांग्रेस की हो सकती?
देखिए, आप आगे जो 5 राज्यों के चुनाव हैं इस साल, आप उनकी अगर बात करें तो उनमें कहीं कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं है। और जो आपने सवाल किया इसको मैं उल्टा करके पूछता हूं कि दरअसल क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस की जमीन हथियाई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या जेडीएस हो, ये सारे के सारे कांग्रेस की जमीन पे पैदा हुए हैं। इवन बीजेपी ने कांग्रेस की जमीन ली है। तो अगर आप देखिए, हर राज्य में 1947 के बाद कांग्रेस हर राज्य में मौजूद थी, हर राज्य में, अधिकतर राज्यों में सत्ता में थी। इस 1967 के बाद कुछ राज्यों में उसकी स्थिति कमजोर हुई और धीरे धीरे 1989 के बाद अधिकतर हिंदी पट्टी राज्यों में कांग्रेस कमजोर होती चली गई। और उसका कारण था धार्मिक और जातीय मुद्दों का उभार। तो पूरा समाज जब धर्म या जाति के आधार पर बढ़ता चला गया और उन जातियों को कैटर करने वाली जो भी पार्टियां थी वो मजबूत होती चली गई, जबकि कांग्रेस अपने सेकुलर और उन मुद्दों को लेके अपनी जगह टिकी रही। और एक बड़ी गलती ये भी हुई कि उसने दोनों समुदायों को संतुष्ट करने की कोशिश की, जिसमें ना माया मिली ना राम, तो ये एक बड़ा कारण था। लेकिन मुझे लगता है कि जो अगले 5 राज्य आने वाले हैं चुनाव, उनमें क्षेत्रीय दल कोई भी नहीं है। और जहां तक आपने उत्तर प्रदेश या बिहार की बात की, तो जितने भी क्षेत्रीय दल आप कह रहे हैं वो सारे कांग्रेस के सहयोगी हैं। तो कांग्रेस अगर अपने सहयोगियों के दम पे बढ़ना चाहेगी तो उसको बढ़ने नहीं देंगे। तो इसलिए अभी कांग्रेस के पास जो सबसे पहला एजेंडा है वो ये है कि जितने भी सहयोगी दल हैं उनके साथ मिलके एक मजबूत मोर्चा बनाएं, जिससे कि हर राज्य में बीजेपी को वन ऑन वन टक्कर दी जा सके। वो अपने सहयोगियों से नहीं लड़ सकती, वो क्षेत्रीय दलों से नहीं लड़ सकती है। क्षेत्रीय दलों से लड़ेगी तो जो कुछ बची है जमीन वो भी खत्म हो जाएगी।
ये थे सीनियर जर्नलिस्ट शरद गुप्ता। और चुनाव नतीजे आज सिर्फ कर्नाटक के ही नहीं आए, पंजाब की एक लोकसभा सीट और उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मेघालय की चार विधानसभा सीटों के रिजल्ट्स भी आ जाए। पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। यहां से आप प्रत्याशी सुशील कुमार रिंकू ने कांग्रेस की कर्मजीत कौर चौधरी को 58,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। जालंधर के अलावा उत्तर प्रदेश में रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर भाजपा गठबंधन के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की। वहीं ओडिशा की झारसुगुड़ा सीट से बीजू जनता दल और मेघालय की सोहियांग सीट से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी विजय हुए। तो ये तो विधानसभा और लोकसभा के उपचुनावों का हाल हुआ। और अब चलिए उत्तर प्रदेश के लोकल बॉडी इलेक्शंस की ओर। बीजेपी के लिए आज के दिन जो कुछ भी सम्मानजनक हो सकता था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में मुनासिब हो पाया। गदगद योगी लखनऊ पार्टी दफ्तर पहुंचे और मीडिया के सामने आए, ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग वाले पार्टी दफ्तर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है।
तो 17 में से 17 नगर निगम में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। नगर पालिका का हाल ये है कि 199 में से 98 यानी आधी सीटें भाजपा की झोली में गई हैं और 39 समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिली हैं। कांग्रेस को 4, बसपा को 17 और 41 निर्दलीय कैंडिडेट जीते हैं। वहीं नगर पंचायत में 544 में से 205 सदस्य बीजेपी के जीत के आए हैं। जाहिर है इस जीत का सेहरा योगी आदित्यनाथ के सिर पर बंधा है। कांग्रेस तंज करने लगी है कि अब मोदी का जमाना गया इसलिए योगी जी का नाम लिया जाने लगा है। भूपेश बघेल को सुनिए।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पहले हमारे अरुण साव जी को पता चल गया, तभी बोले कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी बुलडोजर चलाएंगे। उनको पता है कि अब मोदी जी का जादू समाप्त हो गया है, तभी अरुण साव जी लगातार योगी योगी करने लगे थे, बुलडोजर की बात करने लगे थे।
सवाल है कि निकाय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करके क्या योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को भाजपा की फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप में खड़ा कर लिया है, क्योंकि दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर हुआ है। तो 2024 में जब प्रधानमंत्री के बाद उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में एक खेवनहार की जरूरत होगी तो सबसे बड़ा चप्पू योगी आदित्यनाथ के हाथ में ही होगा। क्या ऐसा है, पूछा मैंने सीनियर जर्नलिस्ट अनिलेश एस महाजन से।
देखिए ये थोड़ा जो है ना बड़ी दूर की कौड़ी आप लेकर आए हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे योगी आदित्यनाथ का चेहरा जो है प्रधानमंत्री के बाद मान लिया जाए स्थानीय निकाय चुनाव के बाद। ये इतना सरल नहीं है और अभी भी जो है योगी आदित्यनाथ को एडमिनिस्ट्रेशन पे जो कंट्रोल है और जो ड्राइव है उसके ऊपर अपना कंट्रोल दिखाना होगा, अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का नेता दिखाने के लिए। और ये जरूर जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं और जिस तरीके से भाजपा ने वहाँ प्रदर्शन किया है, इसने योगी आदित्यनाथ की जो पकड़ है, चीफ मिनिस्टर साहब की जो पकड़ है यूपी के अंदर, वो एक तरीके से सामने लेकर आए हैं। और जो उन्होंने अभी पिछले 6 साल में काम किए हैं, जो उसकी एक्सेप्टेंस है, वो जरूर जो है इसे रिफ्लेक्ट होती है और उसमें अप्रिसिएशन होती है। पर अभी राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो दिखाना उनको कि वो एक सेकंड स्लॉट जो है प्राइम मिनिस्टर के बाद, उसके लिए अभी उनको भी थोड़ा और काम करना पड़ेगा।
अच्छा, समाजवादी पार्टी की जो दुर्गति हुई है, मतलब इन अ सेंस वो कमाल नहीं कर पाए, उसकी वजह क्या देखते हैं आप अभी?
ये अभी जो यूपी में सरकार है वो अपने पॉपुलैरिटी में हाई है, स्पेशली जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर एक इशू बना है अक्रॉस यूपी और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने हैंडल किया था गैंगस्टर्स को, वो काबिले तारीफ भी था और वो जो है उसकी एप्रिसिएशन जो है वो वोटर्स में भी हम लोगों को दिख रही थी। और अभी योगी आदित्यनाथ अभी साल भर ही हुआ है तकरीबन, एक बड़े बहुमत से वापस आए हैं सरकार में, और जो सरकार के लिए पॉजिटिव माहौल है वो अभी भी है, और कोई बड़ा कोई स्कैंडल या बड़ा कोई कंट्रोवर्सी जो है वो वहाँ पे अभी नहीं हुई है। और समाजवादी पार्टी को उभरने के लिए अभी थोड़ा समय लग सकता है, और वहाँ पे ये इसको समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट वोट नहीं देखना चाहिए, बीजेपी के फॉर में इस वोट को देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का भी मतलब इनिशियल फेज ही है सेकेंड टेन्योर में, और वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से डील हुआ है उसके लिए पॉजिटिविटी है, और उसी के ही एंडोर्समेंट जो है ये वोटिंग है।
ये थे सीनियर जर्नलिस्ट अनिलेश एस महाजन। ये था हमारा शनिवार का इलेक्शन स्पेशल दिन भर। ये आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। आज तक रेडियो का ये शो और बाकी शोज भी आप सुन सकते हैं आज तक की ऐप, वेबसाइट और स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग थी सचिन द्विवेदी की। कुलदीप मिश्र के साथ थे आप। नमस्कार।